समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, गुड डे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन चोपड़ा एंड आकर्षिता। वेल, I would like to start off with a quote. Cristiano Ronaldo once said, I see myself as the best footballer in the world. If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you are capable of. Very rightly said, right? Full of courage and determination and confidence that you should have in you, listeners. Definitely in almost every day, you should begin your day with confidence and this kind of a thinking and mindset.
जो वो कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, तो अक्सर जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करेंगे।
एंड आकर्षिता, आई मेंशन्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर अ रीजन हियर एंड मोर ऑन दैट इन द सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। अलोंग विद दिस वी विल आल्सो गिव यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज रिपोर्ट्स कैप्सूल्स ट्रिब्यूट्स एट द एंडिंग ऑफ दिस प्रोग्राम एट द एंड सेगमेंट ऑल ऑफ दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट फर्स्ट वी विल बिगिन विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi lauds Indian soldiers for precision strikes using indigenous weapons and technology to destroy terror bases.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया आत्मविश्वास और उत्साह भरा है.
Drone Didi is bringing new revolution in agriculture. Sugar boards being installed in schools to inculcate healthy lifestyle in children. Paper recycling and protection of honeybees also find mentions in today's Mann Ki Baat.
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन पर बैठक की अध्यक्षता की.
By polls for 5 assembly seats in 4 states to take place on 19th of next month.
नौसेना के जहाज ने केरल के कोची में संकटग्रस्त लाइबेरिया के मालवाहक जहाज के सभी 24 चालक दल सदस्यों को बचाया।
एंड इन टेनिस, फ्रेंच ओपन बिगिंस इन पेरिस टुडे। And now it's time for our segment Dateline India. Well, yes, I mentioned Cristiano Ronaldo in the beginning, and now to begin this segment, I have something which I want you listeners to listen in.
The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, hey, tamina, mina, sangarewa, 'cause this is Africa, tamina, mina, hey, hey. This time for Africa.
Well, yes, listeners, today it's World Football Day. The song was the official anthem for the 2010 FIFA World Cup, which was held in South Africa. It was the first major global event, involving football, and this song became synonymous with the excitement and energy surrounding the World Cup. And it's still considered one of the most iconic World Cup songs ever. The lyrics, let's focus on that. This time for Africa, and the chorus Waka Waka, which means do it or move forward in some African languages. These are motivational. They carry motivation and inspiration.
जी हाँ, ये चुनौतियों का सामना करने के बारे में है जो कि फुटबॉल का सार है। टीम वर्क, बाधाओं पर काबू पाना और जीत के लिए आगे बढ़ना। तो दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों, आज विश्व फुटबॉल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया, जो दुनिया की सबसे लोकप्रिय खेल के वैश्विक उत्सव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के साधन के रूप में फुटबॉल खेल को अपनाने का आह्वान किया गया। देखा जाए तो फुटबॉल खेलते हुए जहां इंसान स्वस्थ रहता है, वहीं अनुशासन व एकजुटता को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए युवा पीढ़ी को विश्व फुटबॉल दिवस पर इस खेल को अपनाने और जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेना चाहिए।
Yes, Akarshita, rightly mentioned. It's said this phrase is used in reference to football. Football is by force.
जी.
Which you just mentioned. Also, let's tell our listeners that this year, 2025, this marks the 101st anniversary of the first international football tournament in the history with representation of all regions, which took place on May 25. The year is 1924 during the Summer Olympic Games, which was held in Paris. And in recognition of this particular milestone, on May 7 last year, the General Assembly passed resolution proclaiming May 25 as World Football Day.
इस प्रस्ताव में फुटबॉल की वैश्विक पहुंच तथा वाणिज्य, शांति और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव को स्वीकार किया गया है तथा ये स्वीकार किया गया है कि फुटबॉल सहयोग के लिए एक स्थान बनाता है।
Well, yes, everybody has heard of FIFA, right? This recognizes the fundamental role of FIFA, Fédération Internationale, the Football Association, and the important role of regional and national soccer federations, as well as relevant associations, in promoting the game of football.
ये प्रस्ताव सभी देशों को शांति, विकास और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में फुटबॉल व अन्य खेलों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और ये देशों को फुटबॉल और अन्य खेलों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
Yes, also talking about this resolution, this invites all member states, organizations of the UN system, international organizations, also academia, civil society and the private sector to observe World Football Day in line with national priorities and to disseminate the advantages of football for everybody, including through this educational and public awareness raising activities, both educational as well as public awareness activities.
बेशक जब हम इस खेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मेसी और रोनाल्डो का जिक्र करना नहीं भूल सकते।
Yes.
दो नाम जो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे।
Forever.
मेसी अपनी जुनून भरी ड्रिबलिंग, दूरदर्शिता और फिनिशिंग क्षमता के साथ जिसने उन्हें खेल का मास्टर बना दिया है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एथलीट, गोल स्कोरिंग मशीन और वो शख्स जिसने उम्र को चुनौती देते हुए अपना दबदबा कायम रखा है।
दिस इज वेरी राइट एंड लिसनर्स, फॉर दैट पर्पस ओनली आई स्टार्टेड ऑफ द प्रोग्राम इन द बिगिनिंग विद हिज पर्टिकुलर क्वोट दैट ही शेयर्ड इन एन इंटरव्यू ऑफ हिज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोइंग फुटबॉल कल्चर व्हिच इज राइट हियर इन इंडिया। वेल, गोइंग बैक इन टाइम, कैन यू टेल मी हु इज फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल? Or I should mention it.
It's Nagendra Prasad.
That's right. In the year 1872, Nagendra Prasad Sarvadhikari, known as the father of Indian football, he introduced the game to Calcuttans. In 1892, Nagendra Prasad Sarvadhikari played a crucial role setting up the Indian Football Association, AIFA, the de facto governing body of football in India before the formation of the All India Football Federation, AIFF. This was in the year 1937.
हमने कई बेहतरीन प्रतिभाओं को उभरते देखा है, जैसे कि सुनील छेत्री, जो न केवल भारत के शीर्ष स्कोरर हैं बल्कि एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं, और छेत्री की निरंतरता और जुनून ने उन्हें हर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया। वे अनगिनत युवा भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा रही हैं।
Sure.
और शगुन, अगर हम बात करें, चाहे वो क्रिस्टियानो है रोनाल्डो,
yes,
या फिर वो मेसी हो या फिर ये सुनील छेत्री हो, इस सब हमें बहुत ही ज्यादा जो है मोटिवेशन एक तरीके से देखा जाए खेलों के प्रति।
वेरी राइटली सेड आकर्षिता। यस,
और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि सॉफ्ट पावर किसी देश को दुनिया में अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद कर सकती है, खासकर अपने पड़ोसियों और रणनीतिक साझेदारों के बीच। इससे देश को दुनिया के कुछ हिस्सों में उसके बारे में मौजूद नकारात्मक धारणाओं और रूढ़ियों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। और वो कहते हैं ना कि आजकल का टाइम सॉफ्ट पावर का ही है। खेल, संगीत और भी ऐसी कई चीजें हैं जिससे हम दुनिया को अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के प्रति आकर्षित कर सकते हैं।
ऑल्सो स्पोर्ट्स एज अ ह्यूज इट हैज ह्यूज अपील टू एवरीबडी। इट इन्फ्लुएंसेस मासेस एज वेल एंड दे शुड टेक अप स्पोर्ट्स इन स्कूल्स एज वेल इन देयर रेगुलर एक्टिविटीज। ऑल्सो यू मेंशन सुनील छेत्री, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन बायचुंग भूटिया देयर, राइट? इंडियन प्लेयर, यस।
और मैं लायनल मेसी की एक कोट के साथ इसका समापन करना चाहती हूँ कि चाहे वो दोस्ताना मैच हो या अंक के लिए या फाइनल हो या कोई भी खेल हो, मैं ई जैसा खेलता हूँ। मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले अपनी टीम के लिए, अपने लिए, प्रशंसकों के लिए और जीतने की कोशिश करता हूँ। व्हाट अ मोटिवेशनल कोट दिस इज।
ट्रू दैट।
कितने मोटिवेशन के साथ वो खेलते भी होंगे, अपनी फिटनेस बरकरार रखते होंगे।
एंड दैट इज व्हाई ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर।
जी, और अब हम बात करेंगे अपनी सेकेंड डेट लाइन की, जो
विच इज वर्ल्ड थायरॉइड डे। It is observed every year on May 25 and the day aims to raise awareness about thyroid disorders.
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में एक छोटे से आकार की ग्रंथि कितनी जरूरी हो सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि की, जिससे जुड़ी समस्याओं को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लोगों को थायराइड के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल आज के दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व थायराइड दिवस का विषय है थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस दिवस का उद्देश्य थायराइड के बढ़ते मामलों और उनके बारे में जागरूकता की कमी को दूर करना है।
Also, listeners, thyroid, it's a small, which is butterfly-shaped gland located at the front of the neck, which is just below the voice box. Because of its role in controlling hormones, the thyroid affects several organs and processes in the body, making proper function essential for maintaining the overall health. And when the gland, this gland that I'm talking about, the thyroid, this produces too much or too little hormone, this can lead to disorders that affect both physical and mental.
और जैसा कि हम जानते हैं श्रोताओं कि महिलाओं और पुरुषों के बीच कुछ हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं।
Yes.
तो अगर देखा जाए तो ये जो थायराइड की समस्या है ये महिलाओं में अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि हर 8 में से एक महिला को अपने जीवन काल में थायराइड की समस्या का सामना करना पड़ता है।
Also, routine checkups and blood tests are vital for those at higher risk of thyroid issues, as you also mentioned, such as women over 60 or individuals with a family history of thyroid disease. An early detection allows for better management.
और ये हार्मोन्स हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियों और पाचन तंत्र सहित लगभग हर अंग प्रणाली को प्रभावित करते हैं। वे शरीर के तापमान, वजन, मूड और पाचन तंत्र को भी विनियमित करने का काम करते हैं। और अगर देखा जाए कि एक छोटी सी ग्लैंड है और वो कितनी ज्यादा इफेक्ट कर रही है हमारे पूरी बॉडी को, हमारे पूरे शरीर को, हमारा मूड इफेक्ट कर रही है, हमारा जो है हेल्थ इफेक्ट कर रही है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में अगर हमें इसमें हम अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है कि हम इस समस्या का अच्छे तरीके से इसका सामना कर पाएं। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी ठीक रखते हैं और डॉक्टर की सलाह लेते हैं,
और एडिक्वेट रेस्ट एंड मेडिटेशन, ऑल्सो यू कैन मैनेज द क्रॉनिक स्ट्रेस, दिस कैन डिस्टर्ब हार्मोन लेवल्स, सो यू कैन मैनेज स्ट्रेस थ्रू एक्सरसाइज, एज आई मेंशनड, मेडिटेशन, ऑल्सो योगा, वेरी हेल्पफुल
योगा, और संतुलित आहार जैसे आयोडीन, सेलेनियम और जिंक से भरपूर आहार को भी आप ले सकते हैं। तो जागरूकता को बढ़ावा देकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अधिक लोग थायराइड से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सके। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
फर्स्ट अकर्षिता, वी विल बिगिन विद जम्मू एंड कश्मीर। Well, here, in a major step towards strengthening community-based security and harnessing the capabilities of former military personnel, the J&K government has approved deployment of ex-servicemen for the protection of critical infrastructure across the Union Territory. We have a report.
The Jammu and Kashmir Sainik Welfare Board had moved a proposal for mobilizing ex-servicemen to safeguard vital infrastructure across the Union Territory. This proposal has now been formally approved by the J&K government, setting the stage for a unique collaboration between veterans and civil authorities. As per the approved plan, 4,000 Ex-servicemen volunteers have been identified for this initiative. Among them, 435 individual possesses licensed personal weapons, significantly enhancing the capacity to respond effectively to localized security situations. These ex-servicemen will be employed for the protection of critical infrastructure in all the 20 districts of Jammu and Kashmir, including power stations, bridges, government installations and other vulnerable points. These ex-servicemen volunteers will serve under the overall coordination of the respective district Sainik Welfare officers. They will function in close coordination with the district administration and local police. Their role is non-combatant, focusing on static guard duties, presence-based deterrence and local coordination. Uniforms and basic equipments will be provided through the Sainik Welfare Board with administrative support from district authorities. Training and orientation programs are being planned to ensure standardized conduct and efficiency. This initiative not only utilizes the discipline, experience and commitment of the ex-servicemen community but also represents a model of inclusive and participatory security. Then Gulshan Rana, Parikrama, Akashwani, Jammu.
केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एकता प्रदर्शनी का आयोजन किया है। 26 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के स्वयं सहायता समूहों व उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के 70 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट।
वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पद्म देव कॉम्प्लेक्स रिज मैदान पर एकता यानी एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल एडवांटेज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 19 मई से शुरू हुई ये प्रदर्शनी 26 मई तक चलेगी, जिसमें देश भर के स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के 70 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। ये प्रदर्शनी एकता मंच, वस्त्र मंत्रालय और हिमाचल सरकार की एक संयुक्त पहल है। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा इस तरह का आयोजन करवाना काफी सराहनीय है।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कृतियाँ हैं वो लोगों को देखने को मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो शिमलावासियों के लिए और जो यहाँ पर्यटक आएंगे इस सीजन में उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण।
इस मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ट्रेड एडवाइजर शुभ्रा ने बताया कि एकता का उद्देश्य देश भर के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प उद्यमियों को एक ऐसा साझा मंच प्रदान करना है जहां वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय कर सकें। साथ ही डिजाइन, बाजार, तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी हासिल कर अपने व्यवसाय को और अधिक सशक्त बना सकें। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प उद्यमियों को भी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक बेहतर मंच मिल रहा है। इस तरह के आयोजन उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी कारगर सिद्ध होते हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से रितेश कपूर।
मूविंग ऑन, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah launched a guided walking tour of Vidhan Sudha for tourists in Bengaluru today. CM Siddaramaiah has opened the doors of Vidhan Sudha, the state legislative house, for the general public. We have more on this from our correspondent.
Bengaluru's most iconic landmark that stands as a symbol of Karnataka's rich democratic and governance legacy, Vidhan Sauda, is no longer out of bounds for the tourists who admired its architectural magnificence from outside. Chief Minister Siddaramaiah launched today the guided walking tour of the state legislative house. The tour offers exclusive insights into its historical significance, architectural marvels and key areas within the complex. Each stop reveals stories of the architecture, artmanship and key events that shape the legislature and democratic heritage. The structure bearing white granite from Magadi and Turvekere is designed in the neo-Dravidian style borrowed from the Chalukyas, Hoysalas and Vijayanagara dynasties that ruled over parts of Karnataka. Its 12 meter tall, 12 granite columns and 45 grand steps and central dome are charming. The visitors opting for the walking tour will be accompanied by a trained tour guide for a duration of 90 minutes. They will be shown the grand steps of Vidhan Sauda, Banquet Hall, the sandalwood model of Vidhan Sauda, Assembly and Council Houses, the huge statue of Mahatma Gandhi and other statues installed within the complex. The tour will be conducted only on Saturdays and Sundays and a fee of 50 rupees will be charged per head. Tickets can be purchased on KSTDC, State Tourism Development Portal. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के न्यूरोलॉजिस्ट सहित इस बीमारी से जूझ रहे लोगों ने हिस्सा लिया। ये एक अप्रत्याशित बीमारी है जो लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। पेश है ये खास रिपोर्ट।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी है। इसे एक ऑटो इम्यून विकार माना जाता है जिसमें शरीर गलती से खुद पर हमला करता है। इसके लक्षणों में थकान होना, हाथ या पैरों में संवेदना कम हो जाना, चलने फिरने में मुश्किल पैदा होना या दृष्टि खो देना शामिल है। इस बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली में मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यह सम्मेलन आयोजित किया। इसमें देश भर के न्यूरोलॉजी के डॉक्टरों और मरीजों के साथ साथ नीति निर्माताओं ने भाग लिया। इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज प्रोफेसर सीमा चोपड़ा सेकड़ी ने बताया कि 13 वर्ष पहले जांच के दौरान उन्हें पता चला कि वह इस बीमारी से ग्रसित हैं।
बीइंग बोर्न नॉर्मल, रनिंग अराउंड, डांसिंग, हर चीज करने के बाद एकदम से दिस हिट्स यू। आई एम नाउ पार्ट ऑफ द MSSI व्हिच इज अ बिग हेल्प, लेकिन बैक देन ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं था, तो बहुत सारा आई वॉज वेरी वेरी अपसेट एंड टेंस, लेकिन थैंकफुली गुड सेंस प्रिवेल्ड, आई प्लान टू कंटिन्यू विद द जॉब।
देश में करीब 4 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी में मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और जितनी जल्दी पहचान हो उतना बेहतर होता है।
इंडिया जो वर्ल्ड जोन में है मॉडरेट प्रेवेलेंस एरिया माना जाता है, तो काफी संख्या में MS के पेशेंट हैं, और क्योंकि इसमें डिसेबिलिटी रेट बहुत हाई हो जाता है, पेशेंट के चलने की क्षमता कम हो जाती है, ब्लड कंट्रोल कम हो जाता है, बोलने में दिक्कत आती है, तो पेशेंट डिसेबल्ड होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर की प्रमुख डॉक्टर बिपाशा गुप्ता ने बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों को ना तो मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है और ना ही सभी जगह इसकी जांच की सुविधा है।
एक तो इनके ड्रग प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता है, एंड इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कत होता है। कुछ तो ये खुद पहुंच नहीं सकते हैं, कुछ रिमोट एरियाज में देयर आर नॉट इनफ डॉक्टर्स हु कैन असेस देम फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट।
ये बीमारी महिलाओं को 20 से 30 और पुरुषों को 30 से 40 वर्ष की उम्र में होती है। इस सम्मेलन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोगियों की देखभाल पर व्यापक चर्चा भी की गई। परिक्रमा के लिए अक्षित वेद्यान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी दिल्ली।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Well, first, in IPL T20 cricket, Chennai Super Kings opting to bat first. They were at 158 for 4 for the loss of 4 wickets in 14.1 overs against Gujarat Titans at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad when reports last came in. And in the second match of the day, Sunrisers Hyderabad, they will clash with Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi from 7:30 PM.
और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता आज फ्रांस के पेरिस में शुरू हो रही है। भारतीय खिलाड़ी अब तक फ्रेंच ओपन में पुरुष डबल्स और मिक्स्ड डबल्स के कुल 7 खिताब जीत चुके हैं। महेश भूपति ने 4, लिएंडर पेस ने 2 और रोहन बोपन्ना ने 1 खिताब जीता है। और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इसी क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
We remember transnational freedom fighter Sardar Singh Ji Rawatji Rana, who died on the 25th of May 1957. S.R. Rana was the founding member of the Paris Indian Society and the vice president of the Indian Home Rule Society.
Rana was born on 10th of April 1870 in Kathiawar, Gujarat. A classmate of Mahatma Gandhi during high school, Rana studied in Ferguson College, Pune, where he came in contact with Lokmanya Tilak and Surendranath Banerjee. He got inspired to join the freedom movement as he volunteered at the Indian National Congress conference in Pune in 1895. In London, while pursuing law, he came in contact with Shyamji Krishna Varma and Bhikaji Kama. He was instrumental in the establishment of India House in London.
In 1899, Rana left for Paris and came to associate with Indian nationalist politicians, including Lala Lajpat Rai, who is known to have visited Paris and stayed with Rana. In 1905, Rana became one of the founding members of the Indian Home Rule Society. Together with Muncher Shah Barjorji Godrej and Bhikaji Kama, he founded the Paris Indian Society that same year as an extension of the Indian Home Rule Society on the European continent. Rana announced 3 scholarships for Indian students, each worth 2,000 rupees, in memory of Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji and Akbar in the December 1905 issue of the Indian Sociologist.
Rana helped the Indian independence movement in several ways. Madan Lal Dhingra had used his pistol to assassinate Curzon Bailey in 1909. He also helped Vinayak Damodar Savarkar to publish his banned book, The Indian War of Independence. He had also helped Savarkar in his Mahsai asylum case in the Permanent Court of Arbitration, The Hague, in 1910. Lala Lajpat Rai had written Unhappy India during his stay in his house for 5 years. He had helped Senapati Bapat to travel to study making of bombs in Moscow. He had helped Subhash Chandra Bose to address the audience on German radio. He had also helped in the establishment of Banaras Hindu University.
Rana developed close links with the French and Russian socialist movements and along with Bhikaji Kama attended the Second Socialist Congress at Stuttgart on 18th of August 1907 where the flag of Indian independence was presented by Kama. Rana was a regular contributor to Bande Mataram, published by Kama from Paris, and The Talwar, published from Berlin, which were then smuggled into India.
आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता की पुण्यतिथि है जिनमें एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता है.
हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं.
क्या वक्त ने समझा है, क्या दौर ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है.
आज तक हम दूसरों का इंसाफ करते आए, लेकिन आज आज हमें आखिरी इंसाफ करना होगा, अपने आप से इंसाफ. जो जान लेना जानते हैं उन्हें जान देने का अंदाज भी आना चाहिए.
जी हाँ, अभी तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं.
श्योरली,
हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त की. सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया, और 1957 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान मिली. सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म वक्त 1965 में प्रदर्शित हुई और उनके सिने करियर का 1967 में सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ. उस साल उनकी फिल्म मिलन मेहरबान और हमराज जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई. और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म हमराज से उनका ये गीत.
तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं. तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं. तुम अगर साथ देने का.
Well, yes, he is very well known for his iconic roles in Indian cinema and he has an indelible mark on Indian cinema. Well, his stellar performances in classics like Mother India, as you also mentioned, Vakt, Padosan and Sadhna, his unique style and delivering impactful message, he has done it through his films. And in 1968, he has been honored with Padma Shri for his contribution to Indian cinema.
आज हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर की पुण्यतिथि है, जिनकी जोड़ी संगीतकार प्यारेलाल के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर है. लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की. अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद के सहायक के रूप में उन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल तेरा हम भी तेरे जैसे कई फिल्मों में काम किया. इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पार समड़ ने इनकी तकदीर बदल कर रख दी. आइए सुनते हैं उनका ये गीत.
Well, Well, yes. Lakshmikant's passing marked the end of an era, but his contributions to music and cinema, they continue to inspire future generations of musicians and composers. His legacy lives on through unforgettable melodies, which remain a significant part of India's cultural landscape. So let's listen to one more song, listeners, now.
चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को या वतन की मिट्टी आई है
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की
Thank you so much, listeners, for tuning in.
Namaskar.